जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा,
हरे रामा हरे रामा,
राम रामा हरे हरे,
राम रामा हरे हरे।
हरे कृष्णा। आज के 17 जनवरी के बरसाना कैंप के इस शाम के सत्संग में आपका स्वागत है। कल हमने एक मैसेज दिया था, अगर आप परिपूर्णता से भगवान के नाम को पुकारेंगे, आपका व्यवहार वैष्णव तरीके से परिपूर्ण होगा और आपकी सेवा एकाग्रता से और परिपूर्णता से होगी, तो इसी जन्म में आप भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं इस कैंप के माध्यम से। तो इसलिए चिंतन बहुत आवश्यक है। जो आज हो रहा है वो कल के चिंतन का परिणाम है। जो कल आपने चिंतन किया था उसके पहले बहुत दिन चिंतन किया था, टिकट निकाला था वगैरह वगैरह, तो आज आप यहाँ कैंप में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से हमारा आज का जीवन जो है वो भूतकाल के चिंतन का परिणाम है और आज जो चिंतन कर रहे हैं वो भविष्य काल में उसका परिणाम देगा। इसलिए चिंतन बहुत आवश्यक है और चिंतन केवल मनुष्य कर सकता है, कुत्ता बिल्ली चिंतन नहीं कर सकते। वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन इन चार चीजों का ही ध्यान कर सकते हैं। कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, कहाँ पर कोई हमला करेगा तो रक्षा होगी और कहाँ पर नर मादी अपना संबंध करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, यही एक चिंतन चलता है। उसको चिंतन नहीं बोल सकते, उसको तो आम शरीर की क्रिया है। चिंतन उसके ऊपर के दर्जे का होता है। चिंतन मनुष्य कर सकता है क्योंकि तो मनुष्य को मन है, इसलिए उसका नाम मनुष्य या मानव दिया गया है और वही चिंतन कर सकते हैं। और मनुष्य होकर चिंतन नहीं करेगा तो मनुष्य का जीवन प्राणी के बराबर है। मनुष्य होकर अगर केवल आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो वो भागवत कहते हैं कि वो द्विपद पशु है, दो पैरों के पशु। हम अपने आप को ही बना रहे हैं, भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो मनुष्य बनाया, दो पैरों का दो हाथ वाला, उनके जैसा बनाया है। बाइबल में लिखा है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, जैसे भगवान दिखते हैं ना दो हाथ वाले दो पैर वाले, वैसे ही मनुष्य का निर्माण किया गया। तो भगवान ने तो ऐसा नहीं बनाया हमको, लेकिन हम लोग अपने चेतना से और अपने क्रिया से या तो अपने आप को मानव बना सकते हैं या तो प्राणी बना सकते हैं। तो ये सब शुरू होता है मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन मन के द्वारा एक्टिविटी कार्यकलाप। इसलिए सभी मनुष्यों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होकर बाहर निकलने के लिए दिया है और जिसके लिए मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो यहां से बाहर निकलने के लिए योग्य है। तो आप कहेंगे देवताओं के जीवन का क्या, आपको ये जानकर खुशी होगी कि दुख होगा मुझे पता नहीं है। लेकिन देवताओं का शरीर भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं है। देवताओं के शरीर को भोग शरीर कहते हैं, उसमें केवल सुख और भोग की व्यवस्था है। मलमूत्र नहीं, बदबू नहीं, दुख का भी कोई इंतजाम नहीं। दुख है लेकिन बहुत कम है, सुख बहुत ज्यादा है और सुख बहुत ही हाई क्वालिटी का है। आप यहाँ पर अगर कहीं गुलाब जामुन खाएंगे तो आपको समझो 50% या 50 मार्क वाला आनंद आएगा। तो वही गुलाब जामुन, यहाँ का गुलाब जामुन वो जब खाएंगे तो उनकी जिह्वा, उनके इंद्रिय ऐसे होंगे कि उनको 150 पॉइंट आनंद मिलेगा उसमें से। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तात्पर्य इसका यह है कि कई गुना मल्टीपल टाइम्स उसी आनंद को वो हमसे ज्यादा भोग सकते हैं उसी चीज को। और तो हमने तो अभी यहां के गुलाब जामुन की बात की, और वहां का गुलाब जामुन कैसे होगा, कैसे उसकी वस्तुएं होगी जो बनाया जाएगा, कैसे उसका स्वाद होगा। वहां का एक एक व्यंजन जो है ना वो हमारे खाने की तुलना भी नहीं कर सकते उसको। उसका दर्शन, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसका लाभ, पोषण, वो कई अनंत गुना ज्यादा मिलता है यहां से। और शरीर से बदबू नहीं आती, शरीर सुगंध आता है। यहाँ पर 60 लोग बैठे हैं तो 60 प्रकार की खुशबू यहां महकती रहेगी, और लोग खुशबू से भी पहचानते हैं शरीर को, हम लोग चेहरे से पहचानते हैं, तो खुशबू से भी वहां पर पहचान हो सकती है। ऐसा क्या कहते हैं, सूक्ष्म रूप का दिव्य तो नहीं कह सकते लेकिन भव्य आनंद वहां पर है। इतना आनंद जब होता है ना तो सर्वसाधारण तरीके से भगवत ध्यान नहीं होता है, जरूरत ही नहीं है। इतना सुख मिल रहा है तो भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बुद्धिमान देवता जो होते हैं ना, प्रगत आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत होते हैं, वो भजन करते हैं भगवान का। जैसे बड़े बड़े देवता है ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, जो प्रमुख प्रमुख देवता है, अधिकारी देवता है, वो सब ज्ञानी है, वो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन बाकी सब जो यहां से यज्ञ वज्ञ करके वहां गए हुए हैं ये सोचकर कि यहां पुण्य करेंगे तो पुण्य जमा करके स्वर्गलोक में स्वर्गलोक का सुंदर और भोग शरीर प्राप्त करेंगे। तो सारांश यही इसका है कि देवताओं का शरीर भगवत धाम प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। भगवत भक्ति कर सकते हैं लेकिन अगर उनको भगवत धाम जाना है तो उनको पृथ्वी पर लौट के आना पड़ेगा। जैसे किसी 7 मंजिल की बिल्डिंग में जो 7वें मंजिल पर व्यक्ति है उसको अगर बिल्डिंग के बाहर निकलना है तो कहां से निकलेगा वो?
जीरो,
ग्राउंड फ्लोर, सिंपल। वो तो कूद नहीं सकता ना 7वें माले से, उसको बाहर निकलना है, चाहे वो 6वें में हो, 7वें में हो, 3रे में हो, 1ले में हो या ग्राउंड में हो, उसको ग्राउंड से ही बाहर निकलना है। उसी प्रकार से 7 मंदिर का जो स्वर्गलोक का भवन है उसमें कहीं भी आप अपनी कर्मों की योग्यता के अनुसार गए होंगे और वहां पर क्षणे पुण्य मर्दलोके विशंति, वहां के हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए तो हमको वापस इधर ही आना होगा और मनुष्य का ही शरीर धारण करना होगा। और वहां पर बीच में अगर अनुभूति हो गई अरे ये कहां फंस गए यहां पर आके, तो लाखों साल की जिंदगी है, कब जाएंगे भगवत धाम। ऐसे भी हो गया तो भी आना पड़ेगा पृथ्वी पर और मनुष्य का ही शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही वो सुविधा आपको दी है, हमको दी है, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते। वो वाला सॉफ्टवेयर जो है ना वो इसी शरीर में फिट किया गया। यहाँ पर सुख दुख एक ही बराबर से है, मतलब दुख ज्यादा है सुख कम है, लेकिन यहाँ पर एकदम सही मात्रा में सब कुछ रखा गया है, एकदम पर्याप्त जो आपको भगवत ध्यान करने के लिए आवश्यक है। दुख भी लिया है ताकि याद आती रहे उनकी। बहुत सुख होता है ना जब, तो सुख का ही अहंकार होता है और सुख का अहंकार होते ही भगवत भगवान से दूर चले जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कहानी उसकी कैसे होता है वहां पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लोग सोचते हैं कि इतने सारे जानवरों के, कीटकों के, पंछियों के, मछलियों के, पेड़ों के जीवन के बाद में ये मिला है तो उसको बहुत आनंद लेना चाहिए, उतनी सुविधा उसमें नहीं थी जिसमें अभी इसमें मिल रही है, दिमाग में मिला हुआ वैसे कैसे, वो तो कच्चा कच्चा खा लेते हैं, हम लोग उसको पका के बढ़िया से फ्राई करके भी खा सकते हैं, मसाला डाल के बहुत सुंदर बना के खा सकते हैं। इतनी व्यवस्था इस जीवन में है तो ये भोगने के लिए है, फिर वो चार्वाक मुनि का सिद्धांत अपना दे, मेक बोरो स्टील बट ईट घी, चाहे तो भिक्षा मांगे लो या उधार ले लो या अपना कमा के ले लो, लेकिन घी खाओ। घी खाओ मतलब क्या है, अच्छे भोग ले लो, उस भोग के लिए ही जिंदगी दी। तो इसलिए देवताओं के शरीर के आकर्षण में हमारा मन व्यर्थ नहीं कर गवाना चाहिए। या तो यहां पर रहते हुए ये भी सोचना नहीं चाहिए कि काश मैं उनके जैसा अमीर होता, कितना अच्छा होता, इतना ये गरीबी है, इतना हर रोज का हिसाब किताब, कितना कष्ट है, कितना संभाल संभाल के खर्च करना पड़ता है। अगर मैं इसी पृथ्वी पर अगर उनके घर में जन्म लेता तो कितनी सुविधा होती, खाने पीने की सुविधा, कुछ ट्रैवलिंग की सुविधा, कुछ खरीदी करने की सुविधा, पहनने की, ओढ़ने की, सोने की, हर प्रकार की इतनी सुविधा है, कहीं कष्ट नहीं है, कहीं पिंच नहीं है, किधर चिमटा नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस बार यात्रा में जा सकते नहीं है, अभी अगली बार इकट्ठा करेंगे यात्रा जाएंगे, इस प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो यहां पर भी लगता है हमको कि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है हमारे से, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भगवान ने जिस स्थिति में आज रखा है वही आपके लिए उनकी प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए योग्य है। जैसे ये कुर्ता जो है ना, ये मेरे माप से बनाया गया है, मेरे शरीर का जो माप है उससे बनाया गया है, मेरे लिए एकदम फिट है वो। आप पहनोगे तो अलग देखोगे इसमें, अगर बड़ा मोटा आदमी आएगा तो भी डिफरेंट दिखेगा, लेकिन मैं पहनूंगा तो एकदम परफेक्ट दिखेगा, क्योंकि वो मेरे लिए बनाया गया है। उसी प्रकार से आपकी स्थिति वो भगवान ने बहुत सोच समझ कर आपके लिए बनाई हुई है, जो आपके लिए उनकी प्राप्ति करने के लिए अनुकूल है। कष्ट भी उतना ही रखा है जो आपके लिए अनुकूल है, और सुख भी उतना दिया है जितना आपके लिए अनुकूल है। डॉक्टर कैसे अभी सब मरीज सब तकलीफ को एक ही दवा देता है क्या, नहीं, आपको जो तकलीफ है उसी उतनी ही दवा देता है, और जो तकलीफ जिस प्रकार की है उतने दिन के लिए दवा देते हैं मर्ज के अनुसार, और एक व्यक्ति को भी अलग अलग मर्ज के लिए अलग अलग दवा देते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन जिस वक्त जो तकलीफ है वही दवा दी जाती है आपको। आप सर्दी के लेके आए मेरे पास तो आपको टाइफॉइड की दवा नहीं देंगे, नहीं भाई टाइफॉइड का भी साथ चल रहा है तो भी दवा ले लो, ऐसा नहीं होता ना भाई, साथ बाजू वाले को भी टीबी हो रही था आप भी टीबी की दवा भी ले लो, ऐसा तो होलसेल माल नहीं होता है ना। कुछ लोग करते हैं ऐसा कॉकटेल, सब कुछ दवा देते हैं एंटीबायोटिक के साथ में, मलेरिया टाइफॉइड एक बार बुखार किसी भी का प्रकार का हो तो वो ठीक ही होना है, इसको डायग्नोसिस नहीं होता है उसको करने के लिए, लेकिन योग्य डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, वो ठीक से आपकी बीमारी को पकड़ता है और आपको कितनी कम से कम दवा आवश्यक है उतना देता है, कितनी कम से कम दिन के लिए आवश्यकता है उतना देता है, चाहे वो 7 दिन हो या 7 महीने हो 2 साल हो, पर्याप्त मात्रा में देता है। उसी प्रकार से हम सब लोगों की जिंदगी जो है उसमें जो भी कुछ चल रहा है वो आज की स्थिति में, आज जो हमको हो रहा है वो हमें आज की स्थिति में भगवान के मार्ग में प्रगति करने के लिए बहुत ही पर्याप्त रूप में बनाया गया है, परफेक्टली अरेंज्ड। और कल जो होगा वो शायद हमारी दृष्टि से अच्छा होगा या कल हमारी दृष्टि से खराब होगा, लेकिन वो कल की स्थिति में आपको भगवान के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। ये हो गया भगवान कृष्ण का परफेक्शन, परिपूर्णता। और सभी भक्तों को जो अपने आप को भक्त समझते हैं या भक्त बनना चाहते हैं उनको भगवान की इस परिपूर्णता पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि एवरीथिंग इज परफेक्ट बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान की व्यवस्था से सब कुछ परफेक्ट है। अगर आपको ये पूरी श्रद्धा है तो फिर भगवान के द्वारा की गई योजना में कभी आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, अरे प्रभु जी देखो इतनी बीमारी है, अरे देखो पैसे नहीं है, देखो ऐसे बच्चा पास नहीं हो रहा है, आप कभी किसी चीज का कंप्लेंट नहीं करेंगे। तकरार न करने का एक ही रहस्य है, अगर आपको यह समझ में आया कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से परफेक्ट हो रहा है। सब लोग अपने अपने मन में हृदय में झांक के देखो आज क्या चल रहा है, या आज की स्थितियों में क्या चल रहा है, कितना कष्ट है उसके अंदर, लेकिन अभी आप उसको ऐसा एक पोंछा मार देना, देना सब परफेक्ट है, ऐसा लिख दो उधर, जो है वो परफेक्ट है, तुरंत वहीं से खुशी की, खुशी का आरंभ हो जाएगा, आनंद का आरंभ वहीं से होगा। संतुष्टि के बेस से ही आनंद की उत्पत्ति होती है। संतुष्टि न होना ये सारे दुख का कारण है। संतुष्टि मन से उत्पन्न होती है, इसलिए मन की पवित्रता, मन की शुद्धि का उपाय संतुष्टि है। शरीर की शुद्धि का उपाय स्नान है, बुद्धि की शुद्धि का उपाय ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, और संतुष्टि से मन शुद्ध होता है। ये सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के जन्म की कथा में बताते हैं कि कैसे कैसे करने से क्या क्या शुद्ध होता है, और भगवान के नाम के चिंतन से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने का व्यर्थ प्रयास मत करना, और जो हमसे खो गया है वो क्यों खो गया इसकी भी चिंता करना। दुख किससे होता है? जो नहीं है वो चाहिए इसलिए दुख होता है, जो था वो खो गया इसलिए दुख होता है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त वो है ब्रह्म भूत, जो ब्रह्म में स्थित है उसी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? न शोचती न कांक्षती, वो ना किसी चीज को खोने पर शोक करता है, न शोचती, वो ना कुछ और चाहिए उसको इसलिए रोता है, न कांक्षती महत्वाकांक्षा आकांक्षा। वही रहस्य है हमारी जिंदगी का, और इस फॉर्मूला से गरीब आदमी भी खुश हो सकता है और अमीर से अमीर आदमी भी आराम से रह सकता है। और बताइए जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सुख नहीं चाहिए, संतुष्टि नहीं चाहिए? सब लोग उसको खोज रहे हैं, लेकिन गलत फॉर्मूला अपनाने से सब लोग दुखी है। भगवान ने यहां पर व्याख्या किया है, न सोचती, कुछ चीज खोने पर दुख मत करो, तो आपका था ही नहीं वो चला गया, और आपके पास नहीं है वो भी आपके हिसाब में नहीं है, उसको भी भूल जाओ, जो अभी है उसमें संतुष्टि रखो, और जो अभी है वो आपके लिए आज की स्थिति में भगवान की प्राप्ति के मार्ग में प्रगति करने के लिए पर्याप्त है। अरे गुरु जी आपका अच्छा है, आपकी पगार तो बहुत अच्छी है, इसलिए आप प्रवचन दे सकते हो, हमारी पगार में आके प्रवचन दो ना। नहीं, उस वक्त भी हमने वही प्रवचन दिया था इस वक्त हम कष्ट में थे। स्थितियां बदलती रहती है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, शायद छीना जाएगा समय के अनुसार। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब ये मन की स्थिति इस प्रकार की होगी तब भगवान के विषय में कुछ ग्रहण करने के लिए हम बहुत अनुकूल हो जाएंगे। संतुष्टि के स्थिति में ही भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान, दिव्य सेवा, दिव्य वस्तु हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर दी गई स्थिति में आप संतुष्ट नहीं है तो आप नहीं ग्रहण कर सकते उसको, अधिकतर आपकी मन की शक्ति वो रोने में चली जाएगी, वो प्राप्त करने में आपको लाभ नहीं, आनंद नहीं होगा उसमें, मजा नहीं आएगा आपको उसमें। थोड़ा सा आपने हमने आने वाली कथा को आपके पात्र में ग्रहण करने योग्य स्थिति मैंने बनाने का कोशिश किया है। समझ में आया ना आपको रहस्य की बात क्या है, सब क्यों बता रहा हूं मैं? ताकि आप लोग अभी आने वाली कथा को उस तरह से ग्रहण करें पूरे लाभ के साथ। और एक कथा शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कथा को श्रवण कैसे करना चाहिए। एक मनोरंजन के रूप में कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, और बाय द वे मनोरंजन भी होते रहता है, लेकिन मनोरंजन के लिए वो कथा नहीं है। ना भगवान ने लीला मनोरंजन के लिए किया थी, की थी आपके लिए, भगवान ने वो लीला उसलिए की थी कि आपका आध्यात्मिक पोषण हो, आपकी आत्मा दिव्य दृष्टि से पुष्ट हो, इसलिए उसको भगवान ने किया। आपकी आत्मा उनकी ओर आकर्षित हो, आपकी आत्मा पवित्र हो, इसलिए उस लीला के माध्यम से उन्होंने आपको संग दिया था, क्योंकि लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें भगवान के भगवान से अलग नहीं है। भगवान भगवान का नाम सेम है, भगवान भगवान का रूप सेम है, भगवान भगवान की लीला सेम है, और भगवान और उनका धाम भी अभिन्न है। तो लीला के माध्यम से भगवान ने अपने आप को आपके लिए प्रस्तुत किया है, और उसका पर्पस एक ही है कि हम शुद्ध हों, पवित्र हों, पुष्ट हों और उनकी ओर आकर्षित हों। इसलिए मनोरंजन के लिए कथा मत सुनना। और सेकेंड चीज कि भगवान की कथा सुन सुन के उसको एक रिवाज नहीं बनाना चाहिए, रिचुअल नहीं बनाना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी बनानी चाहिए। जैसे हमारे कई देशों में, कई राज्यों में ऐसी स्थिति है कि भागवत कथा कर ली बहुत पुण्य प्राप्त होता है, तो सब बड़े बड़े आके बैठ जाते हैं, सोते रहते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर आके बैठना 7 दिन बहुत पुण्य की बात है। डोनेशन देते हैं, बिना भूले दक्षिणा देते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं, आज इसका डोनेशन, कल उसका डोनेशन। लेकिन इतनी बार 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी टीवी देखते रहते हैं, तम्बाकू खाते रहते हैं, पैसे की बातें करते रहते हैं, इधर उधर की गॉसिप करते रहते हैं, उस कथा में भी बीच में गॉसिप करते रहते हैं, इसका क्या हुआ, उसकी शादी नहीं हुई, वो घर गई, उसका ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दिव्य वस्तु हृदय को पूर्ण परिवर्तन करने योग्य है फिर भी वो परिवर्तन नहीं कर सकती है, क्योंकि आपकी जो मन की स्थिति है वो योग्य नहीं है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, आपको दवा देता है और बताता है पथ्य कि आपको इसके दवा के साथ में तली हुई चीज नहीं खाना है, तीखी चीज नहीं खाना है, रात को देर से नहीं, बाद में नहीं खाना है, ऐसा आपको बताएगा तब जाकर मेरी दवा जो है वो जल्दी असर करेगी। आप कैसे बोलते हैं आपको के मरीजों को कि ऑपरेशन के बाद भी धूल में मत जाना, क्योंकि आप धूल के विदेश में रहते हो, तो आप धूल में जाना नहीं, आपको अंदर रहना है कुछ दिनों के लिए, और आपको सर को नीचे नहीं झुकाना है ऑपरेशन के बाद में, और जिस ऑपरेशन आपके ऑपरेशन हुए उस साइड में सोना नहीं, आपको उल्टे साइड में सोना है, किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, इतना भी आपको आदर हो तो भी, कितने दिन के लिए, 40 दिन के लिए, ऐसा बोलते हैं ना, सर पे स्नान नहीं करना चाहिए, बाल धोके उसका पानी यहां से उतरना नहीं चाहिए। तो आपके ऑपरेशन को यश प्राप्त करने के लिए ये सारे पथ्य जो है ना आवश्यक है कि नहीं। उसी प्रकार से भगवत कथा में जो आपको पुष्टि देने की शक्ति है, वो पूरी शक्ति प्राप्त होने के लिए भी आपके जीवन में एक स्थिति ऐसी आपको लानी होगी, इसको हम लोग 4 नियम बोलते हैं, वो जब आप पालन करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ लेने के योग्य हो जाएगी। और पालन करने के बाद भी आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए, मुमुक्षु कहते हैं उसको, मतलब क्या, उत्सुक एकदम, व्याकुल है वो, जैसे पेट भरे आदमी को आपने पंच पकवान की थाली रख दी तो बोलेगा साहब अभी नहीं है, कर देना, भूख नहीं है मुझे, और वही चीज में से आधी चीज भी भूखे व्यक्ति को देंगे तो इतना चाव से खाएगा, इतना आनंद प्राप्त करेगा। तो पेट भरे आदमी को पंच भगवान जहर की तरह है, और वही अन्न खाली पेट वाले को अमृत है, तो फर्क क्या है, पर आपकी स्थिति में है, अन्न में तो शक्ति है आपको आनंद देने की, लेकिन आपकी स्थिति जिस प्रकार से है वैसे ही आपको अनुभूति मिलेगी। इज दैट राइट, सबको ये मंजूर है मेरी बात, यही समझना, भगवान की कथा में कोई दोष नहीं है, परिपूर्ण है, लेकिन लाभ अलग अलग क्यों मिलता है लोगों को, क्योंकि अलग सब लोगों की अपनी अपनी मनस्थिति है, अपनी अपनी चेतना है, किसी को पुण्य चाहिए, किसी को बच्चा होना चाहिए कथा सुनने के बाद में, किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, बोला अच्छा कुछ होगा तो फिर प्रगति होगी, और किसी को शुद्ध प्रेम भक्ति चाहिए भगवान की। तो ये दुकान है ना जो भगवान की कथा का, इसमें हर प्रकार के ग्राहक आते हैं, अपना अपना एम लेके आते हैं, तो वैसे वैसे लाभ होते रहते हैं। तो पूरा लाभ उसको होता है जो मुमुक्षु होता है, जिसको भगवान के विषय में भूख है, प्यास है, तृष्णा है, वो फिर उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो भगवान की कथा को रोज का एक रिचुअल मत बनाना, हो सकता है कुछ समय के बाद में वही चीज ऐसे रूटीन हो जाएगी, रूटीन जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, क्या उसमें पर आनंद नहीं आ रहा है कुछ। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, दाढ़ी का एग्जाम्पल दिया था आपको, रोज दाढ़ी करते हैं हम लोग ना, आनंद आता है उसको, ऑफिस में बताते हैं रोज करके आना है। लेकिन जब पहली बार हमको दाढ़ी आई थी और जब पहली बार हमने शेव किया था, 8 दिन तक हम आनंद में थे और जो मिला उसको बता रहे थे, देखो मैंने शेव किया और मैं जवान हो गया हूं। तो वही दाढ़ी है और वही ब्रश है, वही शेविंग क्रीम है, वही ब्रश ब्लेड है, क्यों नहीं आज उसमें आनंद? क्योंकि आज वो रिचुअल हो गया है, वही चीज कई कदम ले सकते लेकिन कितना पर्याप्त है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए पहले मूड बनाना पड़ता है। और एक उसमें और मैंडेट है, मतलब एक नियम है उसका, कि भगवान की कथा को एंजॉय नहीं करना चाहिए, भगवान की कथा नम्र भाव से श्रवण करनी चाहिए। उसको प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इंग्लिश में लिखते हैं, सबमिसिव ओरल रिसेप्शन, नम्रता से किया हुआ श्रवण, नम्रता से सेवक के रूप में किया हुआ श्रवण, भोग लेने के भाव से किया हुआ श्रवण नहीं है कि अब क्या आएगा, सुनकर मुझे खुशी मिलेगी, अब कुछ और अच्छा बता, अच्छा बताओ, कुछ अच्छी कथा बताओ प्रभु जी, क्या मजा नहीं आ रहा है कुछ, आज की कथा में कुछ मजा नहीं आया, कल की कथा में बहुत मजा आएगा, ये भाव है नहीं, बहुत गलत भाव है। क्योंकि अगेन हम लोग यहाँ पर कर्मणों मनोरंजन करने के लिए थोड़ी आए, लोग आत्मशुद्धि के लिए आए, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों। और एक और बात है कि जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उसको आदर के साथ श्रवण करना चाहिए एज ए सेवक। समझो कोई अमीर आदमी, बड़ा परिवार उसका एकत्र हुआ है, बहुत सारा अपना निजी एक्टिविटी चल रही है, कुछ फंक्शन है उनका, तो कभी कभी सेवक को बुला लेते, भैया तू इधर खड़ा हो जा, काम कुछ नहीं उसको, पड़ेगा तो काम देने के लिए बुला लेते। अभी वो सेवक जो खड़ा है वो ना सब कुछ देख रहा है कि चाचा चाची कैसे बिहेव कर रहे हैं और इनका अपने काका के साथ क्या रिश्ता है, कैसे गले मिल रहे हैं, कैसे चुम्मा ले रहे हैं, कैसे प्रेम से गले मिल रहे हैं और खिला रहे हैं अपने आप को, उनकी निजी एक्टिविटी जो है ना सब वो देख रहा है। लेकिन वो जाके उस भाग नहीं लेगा, खड़े रहेगा, यहाँ पर रहने की मेरी योग्यता नहीं है लेकिन मुझे खड़ा कर दिया है और सब नजारों में देख रहा हूँ, तो मेरे योग्यता का नहीं है। लेकिन जो होता ना कभी कभी उसको मराठी बोलते आगाऊ, आगाऊ मतलब क्या है, उद्दंड होता है, वो जाके उसमें भी भाग लेने लगेगा, वो कुछ बोलेगा तो उसका जवाब भी देगा वो, तो फिर उसको बोलना पड़ता है तू उधर खड़ा हो जाए, तू बाहर खड़ा हो जाए, मतलब इसमें योग्य नहीं है, आप अपना अगवानी मत करो उधर जाके। उसी तरह से भगवान की कथा दिव्य होती है, हम सब लोग बद्ध लोग हैं कर्म बंधन से, सुख दुख के बंधन से, इच्छा से व्यस्त ग्रस्त है हम लोग, फिर भी हमारे लिए कथा प्रस्तुत की जा रही है भगवान की दया से, तो उसको एक आदर भाव से ग्रहण करना चाहिए। मैं भी उसमें से एक हो सकता हूं, क्या हूं यह सोचकर उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने सुंदर उसका अनुवाद किया है, सबमिसिव ओरल रिसेप्शन, नम्रता पूर्वक किया हुआ श्रवण, वही करना है। तो हम लोग बरसाने में बैठे हैं तो उसका इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि राधा रानी का जो जन्म है ना वो सूर्य वंश में हुआ है और कृष्ण का जन्म जो है वो चंद्र वंश में हुआ है, इसलिए चंद्रमा जो है वो अष्टमी वाले चंद्रमा जो है वो पूर्ण चंद्रमा हुए थी अष्टमी के दिन। भगवान मेरे वंश में आ रहे हैं तो मैं थोड़ा आ जाऊंगा, पूरा हो जाऊंगा आज, तो अष्टमी के दिन एकमात्र दिन अष्टमी का दिन होते हुए भी पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया था उस दिन भगवान का गौरव के लिए। और सूर्य वंश में रामचंद्र जी हुए, प्रभु रामचंद्र जी, तो इसके पहले दिलीप राजा थे इस वंश में सबसे पहले। तो दिलीप राजा एक बार ना स्वर्ग में गए, अभी आप बोलेंगे अरे स्वर्ग में कैसे गए, हमको तो वहां पर जाने को मिलता नहीं, ये कैसे गए पृथ्वी वाले लोग, सत्ययुग में त्रेतायुग में ना स्वर्ग के लोग भी नीचे आते थे, यहाँ के राजाओं को लोगों को मिलते थे, दर्शन देते थे, यज्ञ में आहुति स्वीकार करने के लिए आते थे, फिर जाते थे, और ये लोग भी जाते थे, अर्जुन भी गया हुआ है ना स्वर्ग में, अभी अभी मतलब हमारे एक युग पहले की बात है, कलयुग ही ऐसा है घटिया युग है, ना कोई देवता आता है ना आपको वहां पर एंट्री, यज्ञ में आहुति समिधा अर्पण करने के बाद उसका फल स्वीकारने के लिए और आपको देने के लिए देवता लोग स्वयं आते थे वहां पर। अरे भगवान विष्णु भी आते थे यज्ञ में प्रकट होते होते थे, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ होता नहीं। तो ऐसे हमारे राजा दिलीप जो है वो स्वर्ग में गए थे, तो वहां पर कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय का मतलब होता है दिव्य गाय, जो हर इच्छा को पूरी कर सकती है आपकी। कोई भी इच्छा करो, आपकी कल्पना के बाहर की इच्छा भी करो उसकी भी पूरी कर सकते हो, भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त है उसको। तो वो कामधेनु इतनी दिव्य देवता जैसी है, तो उसको वो प्रणाम करना भूल गए। क्यों भूल गए? अगर कोई आदरणीय व्यक्ति सामने खड़ी है तो प्रणाम तो नेचुरल है, कर सकते प्रणाम। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आदरणीय व्यक्ति सामने आपके हैं फिर भी आप प्रणाम नहीं कर रहे, ये कब हो सकता है बताइए? घमंड से। ओके, आपको घमंड है, करेक्ट। और
एक तो बिजी व्यस्त
क्या किसी और काम में व्यस्त है, और कुछ आपको कष्ट है आपके ही इसमें आप मग्न हो गए, दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ है, मतलब ऐसी कोई घटना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, विक्षेपित कर रही है, जिसके द्वारा आप जो आपको सहज करने के लिए भी नहीं कर पा रहे। अभी आपको बता दो स्वर्ग में क्या हो रहा है। स्वर्ग में उस समय ऐरावत जो था ना उसका नृत्य चल रहा था, हाथी है वो इंद्र का, बहुत पांच सुंड वाला बहुत सुंदर हाथी है, जो आपने देखा है वैसा नहीं, उसको देख के आपको उतना आनंद आएगा दर्शन मात्र से, और वो नृत्य कर रहा है। तो उस नृत्य को देखने में दिलीप राजा मग्न थे, इसलिए जब कामधेनु आई तो उसको उसने प्रणाम नहीं किया। आपको लगा तो व्हाट, देखते क्या बड़ी बात है। लेकिन स्वर्ग लोग जितना सुंदर और जितना आनंदमयी है उतने वहां के नियम भी डिफरेंट और ऊंचे कर देते हैं। उतना सा न करने से कामधेनु के द्वारा उसको शाप प्राप्त हुआ कि आपको पुत्र नहीं हुआ। वो भी उसने सुना नहीं क्योंकि वो डांस में इतना बिजी था, अपराध भी हुआ अनजाने में, शाप भी मिला वो भी पता नहीं, आया पृथ्वी वापस, कई साल बीते तो बच्चा ही नहीं हो रहा है, परेशान हो गए क्या करेंगे अभी। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गुरु जी को, उनके बाद में स्पष्ट करा था महाराज जी बताइए क्या होगा अभी, कैसे हमारा वंश कैसा होगा। तो फिर वो ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हैं और वो ध्यान में देखते हैं कि इसने तो कामधेनु का अपराध किया है, तो कहते हैं आपको पुत्र नहीं हो सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि कामधेनु की एक कन्या है नंदिनी, वैसे ही है कामधेनु जैसे ही कहा है, उसी दर्जे की है लेकिन कन्या है उसकी, उसकी आप सेवा करोगे तो शायद कामधेनु के पाप से आप मुक्त हो सकते हो शाप से। तो वो बड़े गाय के वैसे भक्त थे, लेकिन बड़े गाय के श्रद्धा वाले भक्त होने के बाद भी अगर ध्यान कहीं और है तो हमारे हाथ से उसी गाय का अपराध हो सकता है, ध्यान रखना। इसलिए एकाग्रता आवश्यक है, कोई भी चीज करो दिल से और मन लगा के करो, दिल और मन नहीं रहेगा केवल शरीर रहेगा, फिर हाथ रहेंगे तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, और शायद लाभ तो भूल जाओ नुकसान हो सकता है ध्यान नहीं होने से। केवल only by being not attentive not only you will not get benefit but you will get loss also। तो फिर नंदिनी का बड़े प्रेम से सेवा किया, तो गाय के भक्त थे ही वो, अनजाने में गलती हुई थी, तो फिर उनको फिर पुत्र प्राप्ति हुई। और उनको कौन पुत्र हुआ पता है आपको? रघु, राजा रघु, उसको रघुवंश कहते हैं, और जिस रघुवंश में प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ है, वो रघु राजा जो थे जो सूर्यवंश को जिसने गौरव दिया पूरा, सूर्यवंश के लिए आदर सम्मान प्रकट किया पूरे विश्व में, आज तक हम रघुवंशी रघुवंशी बोलते हैं, रघुनाथ कहते हैं कृष्ण भगवान को, उस वंश के नाथ, उस वंश में आए हुए भगवान, तो रघुवंश का कितना गौरव हुआ है। वो रघु राजा फिर दिलीप को प्राप्त हुए पुत्र के रूप में, और उसी वंश में आगे जाकर अभय कर्ण जी राजा हुए, और उसी वंश में आगे जाकर रशंग राजा हुए, और कहते हैं कि रशंग राजा ने प्रथम सर्वप्रथम बरसाने की स्थापना की एक राज्य के रूप में, एक भूमिका बनाई आगे जाकर भविष्य में राधा रानी को आने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक मंच बनाया। तो रसंग राजा ने इस बरसाना क्षेत्र की स्थापना की है, राज्य बनाया उसको। तो ये इसका एक इतिहास है। दूसरा इतिहास ये है कि उसी प्रकार का इतिहास है, देखो आप ध्यान से सुनो ठीक से, जिन जिन को स्वर्ग लोक का लोभ अभी भी मन में है उनको पता चलेगा कि क्या है सब। तीन महासतियां थी जो गौलोक में रहा करती थी। एक बार वो भगवान विष्णु को मिलने के लिए वैकुंठ चली गई। तब वैकुंठ चली गई तो वहां पर चार कुमार थे, क्या नाम है उनका, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। कौन चाह रहे लोग, क्या उनका परिचय है, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी। नारद मुनि को निर्माण करने के बाद भगवान ने उनका निर्माण किया, लेकिन नारद मुनि के प्रचार से, संग से उन्होंने भी निर्णय लिया कि हमको विवाह नहीं करना है, ब्रह्मचारी होंगे। तो ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो गए नारद जी के ऊपर, जिनको जिनको जन्म देता हूं सबको ये लड़का प्रचार करके अपने जैसा बना लेता है, तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, प्रजा उत्पादन कैसे होगा, तो भगवान ने कार्य दिया है वो कैसे होगा, मेरे कार्य में बाधा डाल रहे, तो नाराज हो जाते हैं बेटे को। तो ये जो चार कुमार है नारद मुनि के प्रभाव से इतना तपस्या उन्होंने किया, इतना तपोबल प्राप्त किया कि तपोबल से उन्होंने अपने शरीर को 4 साल का बना दिया, परमानेंट 4 साल का ही शरीर होगा उनका। थे हजारों लाखों साल की उम्र थी उनकी, लेकिन उनका शरीर जो था ना वो 4 साल का शरीर था। क्यों उन्होंने ऐसा बनाया उसको, ताकि उस शरीर के अंदर काम वासना प्रवेश ही ना करे। 4 साल का बालक जो है ना वो आगे जाकर बहुत कामुक बनेगा, लेकिन 4 साल की उम्र में उसके अंदर कामुक भावना नहीं होती, न लड़की में होते न लड़का में होती। ये जानते हैं उसने आगे जाकर इस काम भावना में पढ़ना ही नहीं हमको, इसने 4 साल का ही शरीर बना के रखा था। और 4 साल का लड़का अगर नग्न घूमता है तो किसी को परेशानी है क्या इसमें, तो परेशानी नहीं, कोई संकोच नहीं करेगा उसको देख के, अरे नग्न बालक कैसे आ गया है। 4 साल के बालक को कोई संकोच नहीं है, ना आपको है ना उसको है। तो ये 4 साल के बालक जो है नग्न अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृजन में, पूरे निर्माण में, यहां से लेकर गौलोक तो भ्रमण करते थे। तो बाय द वे इनके बैड लक के कारण वो उधर गेट पर थे वैकुंठ के, ये लोग बहुत जगह थे और कई जगह पर इनकी लीला है। जय विजय को भी के समय में इन्होंने उनकी उपस्थिति वहां पर थी, उनको रोका उन्होंने, तो जय विजय को 7-3 बार आना पड़ा, 4 बार आना पड़ा एक्चुअली। तो ये जब तीन देवियां वहां पर विष्णु का दर्शन करने के लिए पहुंची तो इन्होंने इन 4 नग्न बालकों को प्रणाम नहीं किया, ये सोचकर कि बालक है इसमें क्या है, लेकिन थे तो महान संत, एक तरह से वैष्णव अपराध हो गया। आपको पता होना चाहिए कि वैष्णव को देखकर प्रसन्न ना होना ये भी ये अपराध है। दर्शती ना हर्षती, ये उसका एक एंगल है, उसको बुरे शब्द बोलना वगैरह तो अपराध है ही, लेकिन उसको देखकर दुख होना आपको कि क्यों आगे प्रभु जी मेरे सामने, आई डोंट वांट टू सी वो भी क्या है, देखकर प्रसन्न ना होना और देखकर दुखी होना वैष्णव को देखकर, ये भी एक अपराध है। वैष्णव को दुर्लक्ष करना, उसको सम्मान नहीं करना, वैष्णव को देखकर प्रणाम नहीं करना और वैष्णव को देखकर निंदा करना, वैष्णव को दुख पहुंचाना, क्षति पहुंचाना शरीर की मन की, शब्द से या किसी फिजिकल शरीर की दृष्टि से, ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होता है। तो इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन नहीं किया तो इनको शाप प्राप्त हुआ कि आपको पृथ्वी पर जाना होगा, वहां पर जन्म देना होगा। तो बड़ी दुखी हो गई वो। मेरा ये वाक्य सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग तो आराम से जी रहे हैं यहां पर, उनको तो वहां पर बताया गया कि आपको जाना पड़ेगा, तब से दुखी है वो। जैसे जय विजय को बताया गया ना कि आपने हमको रोका, तो आपको राक्षस बनना पड़ेगा। नहीं, पहले बोला 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो बोले कुछ डिस्काउंट दे दो। उन्होंने कहा 7 जन्म तो भक्त का था, लेकिन अगर कम समय में यहां पर रहना है तो आपको 3 बार राक्षस बन के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 बार राक्षस का जन्म स्वीकार किया उस जगह पर, जिस जगह पर 7 बार भक्त या देवता रूप में जन्म लेने का भी चांस था उनको। तो आप लोग क्या चुनते? 7 बार 7 बालक के देवता बन के रहेंगे। लेकिन उनके मन में ये था कि इसमें पृथ्वी में कैसे भी हो कम से कम समय रहना चाहिए। तो बड़ा दुखाल जगह है, दुखालयम अशाश्वतम महामुपे तेतु पहुंचते या दुखालयम अशाश्वतम, ऐसे भगवान ने बताया है। यहाँ पर दुखी दुख है, इतना सा सुख प्राप्त कर ले इतना सारा दुख झेलना पड़ता है। अधिकतर दुखी दुख है इधर, वो बड़ा बहुत अनुभूति बीच बीच में सैंडविच होती है। तो उनको तो सोच कर भी दुख हो रहा है, वो लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि 7 बार के 3 बार, और हम लोग तो आराम से रह रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है। तो ये एक तरह की आदत है कि हम लोग भी आदत आज हो चुकी है यही रहने की, शरीर से बदबू आने की आदत हो चुकी है, सुबह उठ के मुंह से बदबू आने की आदत हो चुकी है। तो नेचुरल है, ब्रश करेंगे ठीक हो जाएगा। रोज स्नान क्यों करना पड़ता है? क्योंकि स्नान करने के 2 मिनट के बाद ही शरीर गंदा होना आरंभ हो जाता है। तो हर मिनट में स्नान करना मुमकिन नहीं, सिर्फ 2 बार 3 बार स्नान करते हैं, कभी 1 बार करते हैं। लेकिन सुबह आप स्नान करके आए तो शाम को आप वैसे दिखेंगे क्या? शाम को डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि सारी गंदगी शरीर से प्रकट होती रहती है। तो ऐसा शरीर वो देवताओं को सोचकर भी पसंद नहीं आता है, तो वो दुखी हो गए कि मुझे अभी, अरे हमने तो सोचा नहीं था कि इनको प्रणाम नहीं करना होगा अपराध हो जाएगा। अरे बाप रे, तो महान ऋषि है, 4 साल के शरीर में बैठे हुए। तो उतने में विष्णु बाहर आ गए वहां से। उन्होंने कहा, महासतियों महादेवियों क्षमा चाहता हूं, ये शाप नहीं है, ये मेरी योजना है, इसके अनुसार ऐसे हुआ है, वरना आप ऐसे उनका अनादर या प्रणाम न करना ऐसे काम नहीं करते। तो ये मेरी योजना है कि मुझे मेरी 3 दूसरी महासती शक्तियों को पृथ्वी पर प्रकट करना है लीला करने के लिए। तो उनकी मां बनने के लिए आपको जाना है, आपके माध्यम से वो पृथ्वी पर प्रकट हो जाएगी। तो फिर वो शांत हो गई। उन्होंने कहा, चिंता मत करना, मैं भी आ रहा हूँ उनके पीछे पीछे, मेरा भी सहयोग मिलेगा। और वहां पर एक योजना है मेरी दिव्य, मेरी लीलाओं में आपको सहभाग मिलेगा, मेरी लीला में आप सहयोग कर सकते हो। तो वो 3 देवियां जब पृथ्वी पर आई तो 1 से पार्वती का जन्म हुआ, नाम सुनैना है। 1 से सीता देवी का जन्म हुआ, उनका नाम क्या है? एक जगह नैना भी लिखा हुआ है, और भी नाम है। और 1 से कलावती का जन्म हुआ, कलावती। हाँ, तो ये कलावती से हमारा कनेक्शन है यहाँ पर। बाकी उनकी बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, पार्वती की भी है, सीता जी की भी है, कैसे जन्म हुआ क्या हुआ। लेकिन कलावती जब जन्म हुआ देवी का, तो कलावती का विवाह सुचंद्र के साथ में हुआ, और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह कराया। आगे आने वाली लीलाओं को देखते हुए, जानते हुए, दूरदृष्टि से उन्होंने सुचंद्र का कलावती के साथ विवाह किया। और ये लोग इतने बड़े महान थे दोनों कि उन्होंने 12,000 वर्ष तक तपस्या किया, केवल पेड़ से सूखकर गिरते हुए पत्तों को खाकर व्रत किया। वही व्रत जो है वो द्रोण और धरा ने भी किया था, जिसके वजह से उनको अगले जन्म में नंद महाराज और सॉरी देवकी वसुदेव का जन्म प्राप्त हुआ, और कृष्ण उनके बालक बने। तो ये भी 12,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में, जब भी उनका तपस्या 12,000 वर्ष पूरे हुए, तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया उनको, प्रसन्न होकर, परेशान होकर नहीं, हिरण्यकश्यप के लिए परेशान होकर आए थे वो, बाप रे इनकी सर से इतनी अग्नि निकल रही है, ब्रह्मा लोक तक आंच लग रही उसकी, तो रोको इसको जाके, इसलिए परेशान होकर आए थे, इलाज करने के लिए आए थे, इसको रोकने के लिए आए थे। लेकिन ये यहाँ पर बहुत प्रसन्न होकर आए, बोले क्या वर्द है आपको बताओ कि तपस्या से प्रसन्न है। तो वो सुचंद्र कहते हैं कि आपको मोक्ष चाहिए, तो ये तथास्तु। तथास्तु बोलते ही कलावती को बड़ा क्रोध आता है, बोले मेरे होते हुए मेरे पति को मोक्ष कैसे दे सकते हैं, मेरा क्या होगा, मैं तो विधवा बन के रहूंगी। तो महासती को पहचानते हुए कि ये यहां की नहीं है, वहां से आई हुई है, और मैं यहाँ का हूं ब्रह्मा जी, तो डर जाते हैं कि महासती कहीं क्रोधित होकर शाप देगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तुरंत वो क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर देना। ऐसा करते हैं कि आप और आपके पति दोनों मेरे लोक में रहो, ब्रह्मा लोक में, और तब तक रहो जब तक द्वापर का अंत नहीं आएगा, तब तक मेरे लोक में रहकर आप आराम करो। मतलब मेरा लोक जो ब्रह्मा लोक है ना, वो सर्वोच्च स्वर्ग लोक है, उसमें कोई शरीर का सुख का व्यवस्था नहीं है, उसमें केवल मन और बुद्धि का सुख है, सूक्ष्म सुख है। जो हम सोचते हैं अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पीने को मिलेगा, अच्छी अप्सरा मिलेगी, वो सब वहां पर नहीं है, केवल मन का आनंद लेते हैं। जो मुनि लोग होते हैं ना, मुनि लोग, वो सब ब्रह्मा लोग जाते हैं और वहां पर मन का ऐसा अनुभव करते हैं कि उनको शरीर में खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना मन का सूक्ष्म आनंद का, बौद्धिक आनंद का अनुभव करते हैं। एक लोग है यहाँ पर केवल तपस्या का आनंद प्राप्त होता है, तप लोग कहते हैं। ब्रह्मा लोग उसमें सर्वश्रेष्ठ है, महान महान मुनि वहां पर निवास करते हैं, कोई लवलेश नहीं उनके अंदर पाप का, भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की शुद्ध भक्त नहीं है वो, क्योंकि मन के आनंद में भी मंग रहते हो, आत्मा आनंद नहीं है वो अलग है, आत्मानंद टाड़ी डिफरेंट है, मराठी में कहते हैं आत्मानंद टाड़ी, जैसी लागली तो यह जगत तस्तु, तो वो आत्मानंद नहीं है, मन का बुद्धि का आनंद है। तो आप वहां रहो मेरे धाम में, और जब तक मेरे लोक में आप, जब द्वापर का अंत आएगा तो फिर आप दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना, और आपके गर्भ से भगवान की परम अंतरंगा शक्ति राधा रानी जन्म लेगी, आपकी पुत्री बनेगी। ऐसा कैसे भी करके ब्रह्मा जी ने अपने पोजिशन को सिद्ध कर लिया, वो शाप देने वाली थी क्रोध से, तो उनको एक अच्छा उपाय बताया तो वो शांत हो गए, तो ब्रह्मा लोक में रहे। फिर जब द्वापर युग का समय आया समाप्त होने का, तो जब पृथ्वी रोते रोते गई तो फिर इनको वहां से बुलाया गया, और ये कौन बने, ये वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता बनी। और कीर्ति का जन्म कैसे हुआ, वो इंद्रसेन गुप्त थे जो गोवर्धन के पास एक गांव है मुखारा, मुखारा गांव है, वहां पर इंद्रसेन गुप्त थे, बड़े अच्छे भक्त थे भगवान के, उनकी पत्नी थी मुखारा देवी, और मुखारा देवी और इंद्रसेन के द्वारा कीर्तिदा का जन्म हुआ, और भी उनके पांच भाई बहन है, भद्र कीर्ति मिलके दो भाई और तीन बहने हैं, उसमें से एक कीर्तिदा है। तो इस कीर्तिदा का विवाह जो है वो नंद महाराज के मध्यस्थी से वृषभानु महाराज से हुआ, वृषभानु महाराज ने इनका सगाई करवाया, शादी करवाया, और इनके द्वारा राधा रानी का जन्म हुआ। ये दूसरा इतिहास है। तो इसमें से हमको देखना क्या है कि देवता लोग में सब कुछ हाल बेल नहीं है। हम सब लोग सोचते होंगे कि यहां पर तो सुख नहीं वहां पर मिलेगा, लेकिन वहां पर भी हमेशा टेंशन बना रहता है। कोई तपस्या करने बैठ गया तो इंद्र को टेंशन आता है, तुरंत वहां से किसी अप्सरा को भेज देता है तपस्या बंद करो उसकी, तपस्या में सफल हो गया तो फिर मेरा को मेरे कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, मेरा पद रिक्त करना पड़ेगा। इसलिए वहां रहकर भी हमेशा टेंशन में रहते हैं पृथ्वी पर क्या चल रहा है। यहां तक कि जब भगवान ने भी अवतार लिया ऋषि का, नर नारायण ऋषि का, और तपस्या करने बैठे तो भी वो पहचान नहीं पाए, तपस्या करने को बैठ गया तो एकदम परेशान हो गए और अप्सराओं को भेजा, तो भगवान ने अपने शरीर से उर्वशी का निर्माण किया और भी अनंत अप्सराओं का निर्माण किया और उर्वशी का भी निर्माण किया, और उन अप्सराओं को बताया कि जाओ इस उर्वशी को जाके इधर को देख आओ, इतना उसको चाव है शरीर भूखा ले लो। तो इधर समझ गए कि मैं जिसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा हूं वो मेरे मालिक है, भगवान है वो। फिर जब ये बात दुर्वासा मुनि गए थे, भगवान विष्णु लोक से विष्णु को मिलकर आ रहे थे, जैसे हम लोग बरसाने आए हैं तो मुंबई जाएंगे तो महाप्रसाद लेके जाएंगे ना, यहाँ से इत्र लेके जाएंगे या तो प्रसाद लेके जाएंगे या तो माला लेके जाएंगे, तुलसी लेके, जो भी बचेगा उस दिन का चरणामृत बोतल भर के लेके जाएंगे, कहीं अगले दिन तक वो रहेगा, सबको देने की कोशिश करेंगे ना आप लेने के लिए। तो वैसे ही भी देव दुर्वासा मुनि बड़े संत हैं, वो जब महाविष्णु को मिलकर, विष्णु भगवान को मिलकर उनकी प्रसादी माला लेकर स्वर्ग में इंद्र को मिलने गए थे, तभी इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर अप्सराओं का डांस देख रहा था। और संत आए तो ध्यान नहीं दिया, इतना मग्न था, इतना मशगूल था। तो फिर भी दुर्गा स्वामी ने बड़े प्रेम से उनको अपनी माला जो है वो जो लेके आए थे वो दे दिया। फिर भी उसको भी ध्यान नहीं दिया, वो ऐसा ही हाथी के सुंड में दे दिया उसको। हम कैसे करते हैं, माला लेके पकड़ जा रहा बिजी हूं, बहुत वजन हो रहा है, निकाल के सेवक के हाथ में दे देते। वैसे उसने वो माला जो है वो हाथी के सुंड में दे दिया, और हाथी ने क्या किया, वो सुंड में लेकर उसको चरणों में डाला और उसको कुचल दिया। कितना बड़ा अपराध है, कितने अपराध हुए, एक अपराध नहीं हुआ, कितने अपराध हुए। एक दुर्वास मुनि का सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। एक उनके द्वारा जो माला प्राप्त हुई उसका भी सम्मान नहीं किया, ऊपर से माला को कुचल के अपराध कर दिया। उसी क्षण दुर्वासा मुनि बोले कि तुम्हारी मति ठीक नहीं है, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य जो है वो नष्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा नहीं सारे देवताओं का तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे वजह से हो जाएगा। जैसे एक रावण की वजह से सारे राक्षस वंश का नाश हो गया, वैसे तुम्हारे एक राजा की वजह से ऐसा राजा तुम हो उन देवताओं का, तो उनका भी नुकसान होगा। तो कुछ ही समय पर बलि महाराज ने आक्रमण किया और सारा राज्य इंद्र का छीन लिया। क्यों हुआ ऐसे, अप्सराओं का डांस तो कुछ क्षणों का आनंद था, वो कुछ मनोरंजन का कार्य चल रहा था। उतने समय के मनोरंजन के लिए सारा अपना राज्य सम्मान पोजीशन सब गवा दिया। इसलिए जितना मन भोग में व्यस्त रहता है ना, लिप्त रहता है, उतना अधिक आपके तरफ से अपराध होने का चांसेस है। ये जो भोग की लिप्तता है ना, बहुत डेंजरस होती है। अगर आप भगवान के नाम में, भगवान के भजन में, सेवा करने में लिप्त हो, बहुत व्यस्त हो, तो आपके हाथ से अपराध नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि भगवान का भजन में लिप्त होने से सतर्कता बढ़ जाती है, आपके इंद्रिय बहुत संवेदनशील बन जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उसमें कितने भी मग्न हो आप, तो आपके हाथ से अपराध नहीं होगा। इसलिए लिप्त ही होना है तो भगवान की सेवा में होना चाहिए। लेकिन भोग में लिप्त हो गया आदमी कुछ समय के लिए भी, तो बहुत डेंजरस पोजिशन में है, उसके हाथ से कुछ भी अपराध हो सकता है। और उस कुछ क्षण की लिप्तता की वजह से लंबे समय तक का कष्ट का अनुभव उसको प्राप्त हो सकता है। और लास्ट बात बताऊंगा आपको कि भगवान के भक्ति की व्याख्या हमको गुरु महाराज को एक बार पूछी गई थी कि अगर आपको एक शब्द में भक्ति की व्याख्या करनी है, एक शब्द में, तो क्या शब्द यूज करेंगे आप? तो गुरुदेव ने कहा था एब्सॉर्प्शन, मग्नता। ये चीज ही ऐसी है भगवान की भक्ति की कि इसमें केवल मग्न ही होना चाहिए हमको, बाकी किस चीज में अपना मन का विक्षेप नहीं होना चाहिए, मन विभाजित नहीं होना चाहिए, बहुशाखा इसमें विभाजित नहीं होना चाहिए, इसमें भी लगा हुआ, उसमें लगा हुआ है। ऐसे बहुशाखा में जिसका मन विभाजित हो गया ना, उसका भक्ति में मन नहीं लगता। वो क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः, ऐसा मेरा भक्त है। आगे कहते हैं कि वो मेरा भक्त नहीं जिसका मन कई चीजों में बटा हुआ है, बहुत शाकम कहा गया है। इसलिए आप जो भी कर रहे हो उसको मग्नता से करो, मन लगाकर मग्न होकर करो। और वो करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये जगह बहुत अनुकूल है। इस जगह में आपको बहुत उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा उस प्रकार की मग्नता प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर एक बार वो मग्नता का अभ्यास हो गया तो हो सकता है बम्बई में जाकर भी आप मग्न हो सकते हो, इसके अंदर मग्न रह सकते हो, एब्सॉर्ब्ड रह सकते हो। इसी बात पर हमारी कथा को आज विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है, एक आध तो प्रश्न भी ले सकते हैं, एनी क्वेश्चन? हाँ, इनका प्रश्न है कि ब्रह्म में लीन होना और ब्रह्मलोक की अलग अलग चीजें क्या? ब्रह्म में लीन होने का मतलब है आत्मस्तर में एक रूप हो जाना, वो मायावादी लोग ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्म का मतलब क्या है? एक है ब्रह्म देव, वो डिफरेंट है, और जो हम ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म का एक अर्थ आत्मा भी है, और पर ब्रह्म परमात्मा मतलब भगवान है ना। तो वो जब हम ब्रह्म लीन की बात करते हैं तो वो ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, तो बोलते वो आत्मलीन हो गया, मतलब शरीर के बंधन से मुक्त हो गया, शरीर के मन के बुद्धि से और ऐहिक इंद्रिय बंधन से, और ऐहिक मतलब ये दुनिया के यह लोक के बंधन से वो मुक्त हो गया, तो उसको ब्रह्मलीन कहते हैं। लेकिन ब्रह्मलीनता ये परिपूर्णता नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल भगवान से प्रेम का संबंध है, उसका एक स्टेप है ऐहिक बंधन से मुक्त होना। और ब्रह्मा लोक एक जगह है, एक फिजिकल स्टेट है, यहां पर आप जा सकते हो, योग्यता प्राप्त करने पर वहां प्रवेश कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मलीनता आप यहां पर भी प्राप्त कर सकते हो। तो जो योगी होते हैं ना, वो यहां से हिमालय में जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्म सत्य प्रेरण मिथ्या इस अवस्था में आ जाते हैं। और कोई प्रश्न है? यस डॉक्टर चौधरी, कोई प्रश्न है आपको? पूछ सकते हैं आप मैनेजमेंट के साथ प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।